हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन के कहे मुताबिक आंशी नीचे आर्टिस्टिक के ऑफिस में आ चुकी थी। वो मीटिंग रूम में थी और उसके साथ मिस्टर सिंह थे। मिस्टर सिंह ने उसे साड़ी और सिंदूर के साथ देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आंशी की शादी हो चुकी है। मिस्टर सिंह ने आंशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये कारण है मिस जिंदल कि आप ऑफिस नहीं आ रही थी। आपने शादी कर ली और मुझे तक नहीं बुलाया। सब कुछ काफी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, सब ठीक हो जाए फिर आपको ग्रैंड पार्टी दूंगी मैं, आंशी ने जवाब दिया और फिर मीटिंग रूम में आकर बैठ गई। आंशी को काफी भूख लगी थी इसलिए उसने आते ही मीटिंग रूम में पड़े स्नैक्स खाने शुरू कर दिए। उसे देखकर मिस्टर सिंह ने सिर हिलाकर कहा, आप शादी करें या फिर चार बच्चे भी पैदा कर लें फिर भी आपका बचपना नहीं जाने वाला मिस जिंदल। वैसे कौन है वो इंसान जो आपकी इन चाइल्डिश हरकतों को संभालने की हिम्मत कर रहा है? कहा ना, सब टाइम आने पर बताऊंगी, आंशी ने खाते हुए जवाब दिया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। विधिक आने वाला ही होगा, ऐसा करती हूँ कि खाने पीने का सामान साइड में रख देती हूँ। सर की एब्सेंस में आप इस तरह उनसे बात मत कीजिएगा, वो हमारी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, ऊपर से उम्र में भी आपसे बड़े हैं। आप उन्हें विधिक कहने के बजाय मिस्टर राणा कहकर बुलाएंगी तो ज्यादा सही रहेगा, मिस्टर सिंह ने आंशी को समझाया, जिस पर उसने मुँह बनाते हुए सिर हिला दिया। आंशी को उनकी बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला क्योंकि विधिक मीटिंग रूम में आ चुका था। उसे देखकर आंशी बिल्कुल प्रोफेशनल वे में खड़ी हो गई थी। विधिक एकटक आंशी को देख रहा था। मिस्टर सिंह और आंशी उसको ग्रीट करने के लिए आगे आए तो विधिक का ध्यान टूटा। मिस्टर कपूर कहाँ है? विधिक ने इधर उधर देखते हुए पूछा। सर किसी काम से बाहर गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। डोंट वरी, उनकी एब्सेंस में हम मीटिंग हैंडल कर लेंगे, मिस जिंदल आपको सब समझा देगी, मिस्टर सिंह ने सफाई देते हुए कहा। विधिक ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर आंशी की तरफ देखा। विधिक चुपचाप जाकर अपने चेयर पर बैठ गया था लेकिन उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसने अपने मन में कहा, मुझे बिजी करके क्या करने का प्लान किया है तुमने अमन कपूर, जो करना है कर लो पर मेरी बटरफ्लाई का सहारा मत लेना। मैं उस पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहता और ना ही वो कभी झेल पाएगी। सोचते हुए विधिक ने आंशी की तरफ देखा जो फाइल पढ़ने में बिजी थी। फाइल देखने के बाद आंशी ने विधिक से कहा, मीटिंग शुरू करें मिस्टर राणा। विधिक ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। आंशी सामने प्रोजेक्टर की तरफ गई और उसे सब समझाने लगी। आंशी को प्रोफेशनली काम करते देखा मिस्टर सिंह विधिक से मुस्कुराते हुए कहा, इसे इतना प्रोफेशनली काम करते देख काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले की बात है जब इसने ऑफिस ज्वाइन किया था और बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करती थी। फिर तो काफी लकी है मिस्टर कपूर जो उन्हें इतनी अच्छी एम्प्लॉय मिली, विधिक ने जवाब में कहा। हाँ बिल्कुल, मिस्टर सिंह बोले। आंशी अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। प्रेजेंटेशन देते हुए उसकी नज़र मिस्टर सिंह और विधिक पर पड़ी जो दोनों बातें कर रहे थे। उन्हें बातें करते देख आंशी को गुस्सा आया और उसने अपनी कमर पर एक हाथ रखकर कहा, व्हाट इज दिस, यहाँ मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन रेडी की है, सब अच्छे समझा रही हूँ और आप लोग बीच में बातें कर रहे हो, अगर बातें ही करनी है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। एक पल के लिए आंशी भूल गई कि उसके सामने विधिक है और वो बिल्कुल किसी स्कूल टीचर की तरह बिहेव करने लगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिंह हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे तो वहीं विधिक के फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने अपने मन में कहा, कितनी भी कोशिश कर लो खुद को दबाने की पर तुम कभी नहीं बदल सकती, तुम मेरी वही क्यूट सी बटरफ्लाई हो और तुम्हारा ये रूप देखने के लिए मैं तड़प गया था, माई इनोसेंट एंड क्यूट बटरफ्लाई। कैरी ऑन, मैं सुन रहा हूँ, विधिक ने सख्त आवाज में कहा। मिस्टर सिंह थोड़ा बोर हो रहे थे तो उन्होंने थोड़ा टाइम बाहर जाने के लिए कहा, मैं आपके लिए कॉफी का अरेंजमेंट करवाता हूँ। मिस्टर सिंह को वहाँ से बाहर जाता देख आंशी घबरा गई। वो जल्दी से उनके पास आकर बोली, आप किसी को कॉल करके बोल दीजिए वो कॉफी भिजवा देगा, मैं ले आऊंगा ना, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, चलो कंटिन्यू करो, मैं 15-20 मिनट में आ जाऊंगा, मिस्टर सिंह ने कहा और जल्दी से वहां से चले गए। उनके जाते ही विधिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज कदमों से चलते हुए मीटिंग रूम के दरवाजे के पास आया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसे ऐसा करता देख आंशु के दिल की धड़कने बढ़ गई। तुम ये क्या कर रहे हो, मीटिंग चल रही है ना, आंशी ने घबराते हुए कहा। विधिक के साथ अकेले होते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विधिक ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वो आंशी के पास आया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आंशी की पीठ विधिक से लगी हुई थी और विधिक का सर आंशी के कंधे पर था। उसने आंशी को कस कर पकड़ रखा था। प्लीज मत करो ना ये सब विधिक, हम जिस काम के लिए आए हैं मुझे वो करने दो, आंशी ने कसम साते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विधिक ने बिल्कुल धीरे से उसके कान के पास कहा, डोंट वरी बटरफ्लाई, तुम वही कर रही हो जिसके लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है। तुम्हें मुझे कुछ देर के लिए बिजी रखना है, वो तुम अच्छे से कर रही हो। बस मुझे इस सिली सी मीटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम दे ही रही तो अच्छे से दो ना। बोलते हुए विधिक ने आंशी को और भी टाइटली पकड़ लिया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, मुझे तुम्हें बिजी क्यों रखना है, तुमने कुछ किया है क्या विधिक, आंशी की हैरानी से पूछा। आंशी की बातों से विधिक समझ गया था कि उसे अब तक मिस्टर जिंदल के किडनैप होने के बाद पता नहीं है। सब पता लगने के बाद विधिक के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने आंशी की कमर पर हाथ घुमाते हुए कहा, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो बटरफ्लाई कि तुम्हें कोई इजीली मैनिपुलेट कर लेता है। मुझे लगा वो तुम्हारा यूज नहीं करेगा, पर वो भी पीछे नहीं हटा। विधिक की बात सुनकर आंशी को डर लग रहा था। उसने एक बार फिर पूछा, बताओ ना विधिक, तुमने क्या किया है जिसकी वजह से अमन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कुछ नहीं बटरफ्लाई, कुछ चीजें वक्त के साथ ही सामने आए तो सही रहता है, सही वक्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए ऐसे ही खड़ी रहो, बहुत दिनों बाद तुम्हें अपनी बाहों में महसूस कर पा रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी आई एम फीलिंग लाइक हेवन, विधिक ने मदहोश आवाज में कहा। वहीं उसकी बातें सुनकर आंशी को और भी डर लगने लगा, पर अमन ने उसे विधिक को बिजी रखने के लिए कहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी थी। गुस्से में उसके हाथ की मुट्ठियाँ बंधी हुई थीं।